प्रातः क्लास चल रहा था 8 जनवरी 1966 शनिवार को। छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, सब झूठ बोलते हैं, गीता का भगवान तो परमपिता परमात्मा शिव है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो सतयुग के आदि में वैकुंठ का मालिक बना, और वो कैसे बना इनको किसने राजाई दी? कलयुग में तो कोई बैठा ही नहीं है, राजा ही खलास हो गए, कोई राज्य ही नहीं रहा। देखो बुद्धि में बैठना तो चाहिए ना कि जरूर आप ही अपना राज्य स्थापन नहीं किया होगा। क्योंकि कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है, जरूर कोई कीमत पर राज्य मिला होगा। तो ये देखो श्रीमत पर ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। तो तुम बच्चों को भी उनको ऐसे ही लेकर के बाप का परिचय देना है, पीछे उनको अपना समझा दो, उस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कृष्ण तो सिर्फ सतयुग का मालिक था, बेहद विश्व का मालिक नहीं था। कृष्ण को तो जन्म देने वाले उनके माँ बाप थे, जिनको बाप बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा अगर अभी सन्यासियों को ये मालूम पड़े, बाबा तो जोर देते रहते हैं कि गीता का भगवान वो भगवान है न कि कृष्ण है। तो क्या समझती हो? आठ एक 66 की वाणी का 7वां पेज। जो भी गीता सुनाने वाले होते हैं उनकी क्या हालत होगी? वो हालत उनकी पिछाड़ी को आकर के होगी ना। अभी ये बात अगर फैल जावे तो रोला मच जावे। अभी हमारी स्थापना हुई नहीं है, हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो बहुत खिटपिट हो जावे, पता नहीं क्या हो जावे। परंतु ये सब होने का नहीं है। ये तो चलते चलते पिछाड़ी में आकर के वो कुछ समझते हैं। जिस समय की विनाश होता है वो अभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। पहले नंबर में सोए पड़े हैं। तो वो सन्यासी पिछाड़ी में जागते हैं। उनका नाम शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, फलाना फलाना। मालूम पड़ जावे कि गीता का भगवान कौन है। इस गीता में कृष्ण बच्चे का नाम डाल करके गीता ही झूठी कर दी। जब गीता झूठी तो भागवत झूठा, शास्त्र सब झूठे हो गए। तो देखो हाहाकार मच जावेगा। तो जिज्ञासु लोग अपने गुरुओं को पता नहीं क्या करेंगे। बोलेंगे तुम हमको धोखे में डालते आए हो। तो नंबरवार गुरु होते हैं, एक दो के बाद गद्दी में बैठते हैं ना, तो विचार आता है कि अगर ये एक बात भी निकल जाए तो एकदम हाहाकार मच जावे। तो ऐसे जल्दी नहीं निकल सकेंगे। गीता के भगवान का आवाज भी जल्दी नहीं निकल सकेगा। फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, रणिया तो मारनी चाहिए ना, कि भाई गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान तो भगवान है। अरे कृष्ण तो देवता है, देवताएं कलाओं में बांधे जाते हैं। राम देवता सो 14 कला संपूर्ण, नारायण 16 कला संपूर्ण, कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण, और भगवान दो कलातीत गाया हुआ है। तो जो कलातीत है वो ही भगवान है। वो तो सबको निराकार भगवान बोल देते। अब कहां भगवान, कहां देवताएं, और कहां आज के ये विकारी मनुष्य। अपने ऊपर सी 108 का टाइटल धर के बैठ जाते हैं। अरे वो ही निराकार पतित पावन है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो निराकार है सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो ही जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जनमन के चक्र के निहारा होने के कारण सारी षष्ठ चक्र को जानता है। कैसे षष्ठी पावन बनती है, कैसे पतित बनती है, और कृष्ण को तो सब धर्म वाले पूजते भी नहीं है। सिर्फ भारतवर्ष में ही मानते हैं। अरे यहां भारत में भी तो देखो दयानंद था, आर्य समाजियों का मुखिया, धर्म पिता कहो, वो ही इन देवताओं की मूर्तियों को नहीं मानता था। न कृष्ण को भगवान मानता था, न राम को भगवान मानता था, और ये मुसलमान भी देवताओं को भगवान नहीं मानते। अगर वो मुसलमान या क्रिश्चियंस या ये आर्य समाजी कभी भी शिव का लिंग हाथ लग जाए और पता चल जाए कि ये गीता का भगवान है, उनका ही स्वरूप है, तो कभी भी लिंग को फेंकेगा नहीं। जब उनको पक्का मालूम पड़ जाएगा तो क्या मालूम पड़ जाएगा है? क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये लिंग जो है वो उस साकार स्वरूप की यादगार है, उस बड़े रूप की यादगार है, जिस लिंग रूप चिन्ह में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है और प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाता है। ऐसे मालूम पड़ जावे तो, ऐसे तो गीता में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो देखो मुसलमान भी परमात्मा को तो मानते हैं ना। रूहों को तो मानेंगे ना, तो देखो ये कितनी समझानी बच्चों को मिलती है, फिर भी बाप कहते हैं उन बच्चों को भी उठाते जाओ, एक तरफ में फिर उन बड़ों को भी उठाओ, रोको मत, आते रहो, रड़ी मारते रहो उनके सामने। फिर गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि कभी भी ये पंचायती गवर्नमेंट फतेह नहीं पा सकेगी जब तक उस बेहद के बाप को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य कभी सफल नहीं हो सकता। फिर वो भी ग्लानी करना छोड़ देंगे। देखो पहले हम भी तो ग्लानी करते थे ना, कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, अभी तो हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? हैं? क्योंकि जान गए ये भी बाप भगवान कोई मुकर्र रथ में आया हुआ है, उस बाप से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा लेते हैं, क्योंकि बाप ने आकर के सब हमको समझाया और लोग कहते हैं कि जो बाप ने तुमको समझाया वो हमको समझाओ। तो देखो हम सभी को समझाते रहते हैं, तो कहां भी जाते हैं ये सब दिल्ली में जरूर जाते हैं। अभी देखो सब दिल्ली में इकट्ठे तो होते रहते हैं ना, कोई बात होगी कहेंगी चलो दिल्ली। अभी शिव जयंती भी आएगी तो उनको यही कहना चाहिए, पहले ये तो ख्याल करो कि शिव जयंती और श्री कृष्ण जयंती और ये गीता जयंती अभी सेवकों ने जयंतियां तो अलग अलग मनाए लेते हैं, शिव की महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? कृष्ण की रात्रि तो मनाते हैं, ही रात्रि में जन्म हुआ, परंतु शिव की महाशिवरात्रि कहेंगे। अभी ये शिव कौन है? वो शिव तो निराकार है, जिसकी जय जयकार होनी है, जिसे जयंती कहा जाता है, वो जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार ज्योतिबिंदु की मनाई जाती है? तो जरूर वो निराकार कोई साकार स्वरूप में आकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, ऐसे प्रत्यक्ष होता है कि जो देखे इन आंखों से और जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, उसकी बुद्धि से मुख से अनायास ही निकले ये मेरा बाप आ गया। तो पूछना पड़े भगवान किसको कहें, साकार को कहें या निराकार को कहें? जो प्रवेश करने वाला है वो भगवान या जिसमें प्रवेश करता है वो भगवान? दोनों भगवान, दोनों भगवान है, साकार निराकार दोनों भगवान। जिस साकार स्वरूप में भगवान प्रवेश करता है वो भगवान, या प्रवेश करने वाला भगवान? प्रवेश करने वाला भगवान वो निराकार है, जिसमें प्रवेश किया उसका तो तन है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, कहते हैं देव देव महादेव वो तो देवता है, तो देवता भगवान में फर्क हुआ ना। और साकार तो पुनर्जन्म में आते हैं जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है ना। और निराकार तो वो भगवान निराकार तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके पाप पुण्य का कोई खाता बनता ही नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है, उससे कभी पाप होने की संभावना हो ही नहीं सकती। जिसे पाप और पुण्य बनते हैं उसको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, और वो तो इस सृष्टि के चक्कर से दूर है। सृष्टि के चक्कर में जो आता है वो जन्म मरण के चक्र में भी आता है। तो साकार पुनर्जन्म में आते हैं, वो निराकार जो साकार में प्रवेश करता है वो तो पुनर्जन्म रहित है, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो बताओ भगवान किसको कहा जाए? जन्म मरण के चक्र में आने वाले को भगवान कहा जाए कि जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो भगवान है? त्रिकालदर्शी कौन हो सकता है? जन्म मरण के चक्र में आने वालों को तो सब भूल जाता है, पूर्व जन्म का याद रहता है किसी को? नहीं, वो एक निराकार भगवान ही है जो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। तो भगवान एक ठहरा, वो बाप ठहरा। कैसा बाप? बेहद का बाप। कृष्ण को कोई बेहद का बाप कहेंगे? भारतवासी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान मुसलमान और क्रिश्चियंस क्या कृष्ण को बाप मानेंगे? नहीं मानेंगे। भगवान तो सबका बाप है। तो भगवान वाच जो गीता में है वो अभी कौन ठहरा? गीता में जो भगवान कृष्ण का नाम डाल दिया है वो साकार कृष्ण जन्म मरण के चक्र में आने वाला। कृष्ण ने जन्म तो लिया ना, किससे जन्म लिया है? अरे वसुदेव और देवकी से जन्म लिया ना। तो जो जन्म लेने वाला है शरीर छोड़ता भी है तो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये बात तो बहुत समझानी है। क्या कि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है? क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है। ये है तो रिलीजियस माइंडेड, ये शास्त्र जो भी है वो भी रिलीजियस माइंडेड है, परंतु वो नेहरू नहीं है। क्या है? रिलीजियस माइंड। और ये रिलीजियस माइंडेड है, कुछ और बड़े बड़े भी हैं। तो क्या ये सब किसको किसको पकड़े? कोई बड़े को पकड़ना चाहिए, जिसका कुछ आवाज भी हो। तो बाबा कभी कभी कहते हैं जाओ, पिलानी है ना, क्योंकि इस समय में ये जो बिरला लोग हैं ये बड़े साहूकार हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बात मत पूछो। और ये रहते हैं पिलानी में, वहां भी लक्ष्मीनारायण का मंदिर बना हुआ है। बाबा बीच में कहते थे कि लक्ष्मीनारायण का फर्स्ट क्लास एक चित्र जिसमें ये लिखत भी हो, कृष्ण भी नीचे हो, ये जाकर के वहां पिलानी में प्रदर्शनी करें। नीचे कृष्ण, ऊपर लक्ष्मीनारायण। मना तो कोई भी नहीं है, कहां भी प्रदर्शन करें, वहां उनको समझावे भी और उन लोगों को बैठ करके नॉलेज भी देवे, तो वहां भी आवे, कोई समझे कि ये सब बेचारे धोखे में फंसे हुए हैं। लक्ष्मीनारायण के मंदिर तो बनाते हैं, वहां भाषण तो कर सकते हैं, परंतु जैसे गुड़िया बनाते हैं ऐसे बनाते रहते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे गुड़िया बनाते रहते हैं, अर्थ तो कुछ समझते नहीं है। ये चित्र भी तो पुराने हो जाते हैं, फिर नए बनाते हैं। अभी इनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, किनके, जिन्हें लक्ष्मीनारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, मूर्तियां बनाते रहते हैं, इनके ऑक्यूपेशन, इनका धंधा क्या था, इन्होंने क्या किया, क्यों इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, भव्य मंदिर, ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। और कोई देवताओं के इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाते हैं, और लक्ष्मीनारायण के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं। तो इस बात का क्या कनेक्शन है कि भक्ति मार्ग में लक्ष्मीनारायण के भव्य भव्य मंदिर बनाते हैं? जरूर इन्होंने इस दुनिया को भव्य बनाया होगा, सारी दुनिया का परिवर्तन किया होगा नरक से स्वर्ग में, भगवान की श्रीमत पर। तब कहा जाता है नरक को नारायण बनाने वाला भगवान है, नारायण स्वयं तो भगवान नहीं है, स्वयं है भगवान कि देवता है, देवता है। तो जरूर नारायण को निराकार भगवान ने क्या बनाया, नर से नारायण बनाया। तो जिनको उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है फिर भी मूर्तियां बनाते रहते हैं मंदिरों में, उनको तो मूर्ख कहेंगे। जब जानते ही नहीं हो तो इनकी मूर्तियां क्यों बनाते जाते, यानी मंदिर उन्हें लक्ष्मीनारायण का बनाते हैं, जिनकी बायोग्राफी का कोई भी पता नहीं है कि ये कब आए थे, इन्हें लक्ष्मीनारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली, तो वहां बैठ करके समझाने से घर से उनके भांति भी आएंगे समझने के लिए। अभी कोई न कोई उठ तो जाएगा, कहां से, उनके भातियों में से, उनके घर परिवार वालों में से, संबंधियों में से कोई न कोई की बुद्धि में तो बैठेगा। तो देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ख्यालात भी रखने चाहिए। घरों में बैठ करके अपने मित्र संबंधियों को भी तो उठाना चाहिए। घर का और पर का दोनों सर्विस की सर्विस करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अभी जब तुम बाप के पास आए हो, बाप के पास तुमने जन्म लिया है, बाबा के बने हो, तो ये सर्विस करनी चाहिए। 8:66 की वाणी का 8वां पेज। सर्विस करने की बात दिल में रहनी चाहिए, बाकी जो पुराने संस्कार हैं, गंदे डर्टी एकदम जानवरों जैसे संस्कार, जिन संस्कारों में पाप ही पाप होता है और तो कुछ बिल्कुल होता ही नहीं, किन संस्कारों की बात की है? है? क्या पुराने संस्कार, बाबा का इशारा किस तरफ है? बाबा का इशारा है विकार में जाने का। देह और देह के संबंधियों में फंस मरने का। देखो पूजा में भी पाप होता है, खाने में भी पाप होता है, ये सारी पापात्माओं की दुनिया है ना। तो इतना पाप किया है, अब जब बाप से पुण्यात्मा बनती है तो उनकी मत पर चलना चाहिए, नहीं तो अपना जन्म जन्मांतर का खाता घाटे में डाल देंगे और फिर पीछे बहुत पछताएंगे जब रिजल्ट निकलेगा। हाय हाय करेंगे कि बाप दादा, यहाँ तो दोनों ही है ना। कौन दोनों? बाप भी है, साकार में ही है कि निराकार में भी है? है बाप जब कहें कि साकार में भी है तो वो मनुष्य आत्माओं का बाप है ना यहाँ। और दादा जो इस सृष्टि का पहला बच्चा है कौन है? कृष्ण। वो भी यहाँ मौजूद है। जो बड़ा बच्चा होता है तो दादा कहा जाता है ना, है तो दादा भी है और दादा को जन्म देने वाला बाप भी है। तो फिर देखो दोनों ही है। और ये हमको कितना समझाते हैं, पाप तो बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा 100 गुना पाप हो जाता है। क्यों भाई? हम भगवान के बच्चे बने तो हमारा 100 गुना पाप होना चाहिए है? दुनिया वालों का 1 गुना पाप बनता है पाप करने से, और हमारा 100 गुना क्यों है? क्योंकि हमको तो ज्ञान है और दुनिया वालों को तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो जैसे एक छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चों से कुछ पाप हो जाता है तो वो पाप में गिना जाता है क्या? नहीं, वो तो छोटा बच्चा है, इतनी अकल ही नहीं है। तो तुम्हारा तो 100 गुना पाप हो जाता है। आगे चल करके तुम्हारी बहुत दिल खाएगी। जब बहुत साक्षात्कार होंगे, क्योंकि बाप कहते हैं कि पाप करते हो तो भी अभी बता दो। क्या अभी क्यों बता दे है? जब गले तक आ जाएगा तब बताएंगे। नहीं, अभी बता देंगे तो पाप मल्टीफाई नहीं होगा, नहीं तो पाप वृद्धि को पाता रहेगा। जैसे कोई से लोन लेते हैं तो लोन का पैसा वृद्धि को पाता रहता है ना, ऐसे पाप भी वृद्धि को पाता रहेगा। क्योंकि बाप कहते हैं कि पाप करते हो तो जरूर अभी बता दो, नहीं तो बिल्कुल जोर से मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे तो 1-2% अभी 100% भी चढ़ता जाएगा। फिर बहुत बहुत पछताएगा, बहुत दुखी होगा, बहुत सजाएं खाएंगे। इसलिए बाबा कहते रहते हैं दिल में जो कुछ भी पाप किया हुआ हो, दिल में खाता रहता तो है ना, कि बाबा के बन करके या अभी भी जो पाप करते हो तो पाप करना छोड़ दो, क्योंकि दिल साफ होगी तो मुराद हासिल होगी। अगर बाप के सामने दिल साफ नहीं रखे, कुछ छुपा के रखा, तो जन्म जन्मांतर की मुरादें हासिल नहीं होने वाली है। दिल में शैतानी होगी तो कभी भी मुरादें हासिल नहीं हो सकेंगी। शैतानी माना ही, तुम बाप के नहीं बने हो, रावण के बने हो। बाप तो कितना अच्छी तरह से समझाते रहते हैं, तो समझ करके सर्विस में भी लग जाना चाहिए। यहां हमारे बच्चों को कोई धंधा धोरी तो है नहीं। कहां, क्या कहा है, कौन से बच्चों को? यहाँ हमारे बच्चों को कोई धंधा धोरी तो है नहीं। यहाँ माने कहाँ? लौकिक में। लौकिक में धंधा धोरी नहीं है, है? संगम युग में धंधा धोरी नहीं करते? अरे पेट के धंधे करते नहीं, नहीं करते? करते फिर झूठ के बोलते। बाबा ने क्या कहा वो तो समझो, हैं? क्या कहा? यहाँ हमारे बच्चों को क्या कहा? और धर्म वाले जो हैं, और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, उनकी बात नहीं कर रहे। जो हमारे बच्चे हैं उनको कोई धंधा धोरी तो है नहीं, उनका तो धंधा ही है सर्विस। क्या कहा? तो किन किन बच्चों की बात हो रही है? पीछे जो सर्विस कर सके है? कौन से बच्चों की बात है? अरे लास्ट की बात बताई, जिस समय तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। कहाँ इस सृष्टि पर परम धाम कहाँ उतारा जाएगा? माउंट आबू में। तो जहाँ परम धाम उतार लेंगे, तो जो बाप के बच्चे हैं, जिन्हें बाबक कहते हैं कि हमारे बच्चे सूर्यवंशी बच्चे, कितने होंगे? है यथा राजा तथा प्रजा कितने होंगे? है 4.5 लाख। वो कहाँ पहुंचेंगे कि धंधा दोरी करते रहेंगे तब तक? है पहुंचेंगे ना? अगर नहीं पहुंचेंगे तो दूसरे धर्म के हैं, अगर पहुंच गए बोरिया बिस्तर समेट करके तो कौन से धर्म के हैं? पक्के सूर्यवंशी हैं। तो देखो जिनका धंधा धोरी यहां तो है नहीं, उनका तो धंधा ही है सर्विस। पीछे पीछे माने अभी नहीं, अभी तो वो ही सर्विस करेंगे जो सरेंडर होते हैं। पीछे प्रजा पीछे प्रत्यक्ष होगी या राज परिवार वाले बाद में प्रत्यक्ष होंगे? कौन प्रत्यक्ष होंगे? या राजाएं प्रत्यक्ष होंगे पहले बाद में, या महाराजाएं बनने वाले पहले प्रत्यक्ष बाद में प्रत्यक्ष होंगे? बाद में कौन कौन प्रत्यक्ष होंगे, पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? है पहले महाराजाएं 8 प्रत्यक्ष होंगे, बाद में 108 राजाएं प्रत्यक्ष होंगे, फिर उन राजाओं की जो फैमिली है राज परिवार के भांति है 16108, वो प्रत्यक्ष होंगे, फिर बाद में पीछे सबसे पीछे प्रजा वर्ग वाली आत्मा। तो बोला पीछे जो सर्विस कर सके उनका तो धंधा ही है, जो बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा। तो माउंट आबू में बैठ के क्या सर्विस करेंगे? है वहां तो जो आएंगे वो सारे श्रद्धा विश्वास वाले ही आने लगेंगे, तो उनको सुनाएंगे ना कुछ है, उनको बाबा का ज्ञान बताएंगे ना? नहीं बताएंगे? यज्ञ के लिए जितना करेंगे सच्चाई से करेंगे, छोटी सेवा करें मोटी सेवा करें हल्की करें पर सच्चाई से करें, उनमें कोई भी दिल में गंदगी नहीं होनी चाहिए। कोई भी गंदगी होगी तो बहुत गंदा कर देगी, बिल्कुल ताजा नहीं रहने देगी, बासी बनाए देगी। बाबा कहते हैं ना सच्ची दिल पर रहा साहब राजी, तो सच्ची दिल पर है माना दिल में तुम आत्माएं हो ना, तो सच्ची आत्मा के ऊपर सच्चा परमात्मा बहुत राजी होगा। और ये तो अज्ञान काल में भी ऐसे ही होता है। क्या है अज्ञान काल में कहां परमात्मा होता है? अज्ञान काल में परमात्मा होता है, है? नहीं होता है, भगवान तो होता ही है इस सृष्टि पर सदा कायम, एक शिव बाबा ही है, और तो कोई चीज सदा कायम है ही नहीं। तो जो सच्चा परमात्मा है वो सच रहने वाली आत्माओं के ऊपर राज ही रहेगा, होगा तो, लेकिन हमें सबको पता पता नहीं चलेगा। पता न चलने के बावजूद भी सच्चे दिल वालों के ऊपर राजी रहेगा। बच्चे सपूत होते हैं तो फिर देखो सपूत बच्चे कितना बाप की इज्जत करते हैं, है? जो सपूत बच्चे होंगे वो बाप की इज्जत करेंगे कि औरंगजेब के मुआफिक है जेल में डाल देंगे, ऐसे करेंगे नहीं। बोलते हैं तुम बैठ जाओ, बाप को बोलते हैं तुम बैठ जाओ, धंधा वंदा नहीं करो, हम तुमको हम आपको घर बैठे ही पहुंचाते रहेंगे, आपको कोई तकलीफ करने की दरकार नहीं है। देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, अरे कोई कोई तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप को भी मार डालते हैं। इस ड्रामा में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, सारी उनकी मिल्कियत ले लेते हैं, बाप को मार दिया और मिल्कियत अपने हाथ में ले ली। मैंने बहुत ऐसे दृष्टांत बताए हैं कि पैसे के ऊपर लड़कर भाई भाई को मार देते हैं, फलाने को मार देते हैं। अरे ऐसी बातें तो अखबारों में बहुत पड़ती रहती है। अच्छा बच्चे टोली ले आओ, बाबा को ये बार बार टोली याद आ जाती है, मुरली सुनाते सुनाते बार बार गीत बजाओ, रिकॉर्ड चलाओ, ऐसे क्यों होता है, है? नहीं बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि की तो ये आदत होती है ना, है? बहुत गहरी गहरी बातें कोई आ जाती है तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि छाछट चल रहा है ना, 69 में शरीर छोड़ दिया। तो बाबा के साथ तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, कौन जो दिल के साफ हैं, साफ हैं, साफ नहीं थे तो बाबा को ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं बेहद का बाप, गीता का भगवान साकार में मैं, और मेरे बच्चे ऐसे। तो बाबा को जब बात समझ में नहीं आई तो टोली याद, अच्छा टोली लाओ, मुंह मीठा करें। हाँ मैं बोला खर्ची दो, तो देखो बच्चा क्या बोलता है, बोला पढ़ने जाओ, बाप ने बोला पढ़ने जाओ तो तुम्हें खर्ची दे, मैं बोला नहीं मैं पढ़ाने जाता हूं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ना, और तुम पढ़ते नहीं हो, तो जाओ पढ़ने। तो देखो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, सो तो तुम भी करते हो। तुम सिर्फ पढ़ते थोड़े ही हो और उनको पढ़ाते भी तो हो, सो तो तुम करते भी हो। उसने कहा अच्छा हम पढ़ने जाता हूं, पढ़ने तो जाता हूं लेकिन खर्ची हमको दो। देखो फिर खर्ची भी दे दिया। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, बाबा सिकिल दे क्यों कहा? बड़े बड़े सिक्के मिले थे क्या? सिकिल दे क्या गुम हो गए थे? हाँ बच्चे तुम ठीक 5000 वर्ष पहले गुम हो गए थे, अभी फिर से आकर के मिले हो। और ऐसे हर 5000 वर्ष बाद तुमको मिलते हैं वर्षा देने के लिए, क्योंकि रावण तुम भारतवासियों का वर्षा छीन लेता है, क्योंकि भारतवासी ही तो स्वर्ग के भारतवासी, जो स्वर्ग के भारतवासी थे वो ही नरक के भारतवासी बने। और कोई खंड वालों को स्वर्गवासी नरकवासी कभी नहीं कहेंगे, कहेंगे हैं? क्यों नहीं कहेंगे हैं? क्योंकि और जो धर्मखंड हैं, और जो धर्मखंड हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो ऑस्ट्रेलिया हो, वो जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उनमें नरक ही होता है, कलयुग ही होता है। और तुम जो भारतवासी हो, वो भारत तो पुराना खंड है, वहां तो स्वर्ग भी था, तो और धर्म वाले नहीं कह सकते। कोई भी दूसरे धर्म को सिर्फ शिवाय आदि सनातन देवी देवता धर्म के और कोई को नहीं कह सकते। भले वो लोग समझते हैं कि मनुष्य बहिष्ट में जाते हैं, हाँ भाई गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, खुदा का बगीचा कहते हैं, परंतु जो कहने वाले मुसलमान हैं वो कोई आते थोड़े ही हैं, जानते हैं कि खुदा बहिष्ट स्थापन करते हैं, परंतु वहां रहते कौन है वो तो किसी को मालूम ही नहीं। अरे इनको भी मालूम नहीं है, किनको? जो बहिष्ट में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, अभी मालूम पड़ता है कि वाह ये भारत ही स्वर्ग बनता है और हम जो स्वर्ग में रहते हैं वो ही भारत फिर नरक भी बनता है, स्वर्ग सिर्फ भारत बनता है। उसके लिए भारत की बड़ी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तीर्थ माने है, तीर माने किनारा, था माने स्थान, अर्थात जिंदगी की नैया को एक ऊंचे से ऊंचे ठिकाने लगाने वाला स्थान। मनुष्य की जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा मिथ्या और क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो देखो बड़े से बड़ा तीर्थ है भारत, परंतु कृष्ण का नाम बदल जाने से फिर ऐसे ही कहेंगे कि ड्रामा, और धर्म वाले मानते ही नहीं भारत को बड़े से बड़ा तीर्थ। अच्छा ड्रामा, मीठी मीठी सिकिल्ली बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।